आरव ने मिस्टर कपूर से बात करके जबरदस्ती आयु को साक्षी की अटेंडेंट बना दिया था। आयु साक्षी के पास उसके रूम में टेबल पर बैठी थी। थकान की वजह से उसने अपना सर बेड पर लेट टिका रखा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। वहीं आरव की नज़रें उसी पर थीं। नींद में आयु करवट बदलने को हुई। वो नीचे गिरती उससे पहले आरव दौड़ कर गया और उसने उसका सर अपने हाथ पर टिका लिया। मंथन सही कहता है, तुम बहुत केयरलेस हो बेबी, बोलते हुए आरव ने उसे अपनी गोद में उठाया। आयु गहरी नींद में थी, उसे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। आरव ने इधर उधर देखा तो साक्षी के बेड के एक कोने में दूसरा बेड लगा था, जो रिलेटिव के लिए होता था। उस पर मंथन सोया हुआ था। ये भी अजीब इंसान है, यहाँ आया था तब इतना गुस्से में था जैसे क्या ही कर देगा, और अब देखो आराम से सो रहा है, आरव ने सिर हिलाकर कहा। वो आयु को मंथन के पास लेकर गया और उसके पैर से मंथन को मारते हुए उठाने लगा। आयु के पैर लगने से मंथन की नींद टूटी तो वो अजीब नज़रों से आरव की तरफ देख रहा था। उसने उनिंदी आवाज़ में कहा, ये क्या है और आपने इसे गोद में क्यों उठा रखा है? क्योंकि इसे नींद आ गई है, अब ड्यूटी करने की बारी तुम्हारी है, चलो उठो और मुझे इसे यहाँ लेटाने दो, आरव ने धीरे से जवाब दिया। उसके कहते ही मंथन बेड से नीचे उतर गया। उसके उतरते ही आरव ने आयु को वहाँ आराम से लेटा दिया। आयु को आराम से सोया हुआ देखकर मंथन ने कुछ पल उसे देखा और फिर गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसने इरिटेट होकर कहा, मुझे इससे यही उम्मीद थी, पहले ये ड्यूटी करने के लिए बहाने बना रही थी और अब सो गई है, इसे किसने डॉक्टर बना दिया? मुझे तो अभी भी इसे देखकर एक स्कूल गर्ल वाली फीलिंग आती है, जिसे एक काम ठीक से नहीं होता। मंथन के मुंह से आयु की बुराई सुनने के बाद आरव ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा और फिर कहा, अभी भी तुम्हारे दिमाग से परफेक्ट बनने का भूत उतरा नहीं है क्या? तुम्हें अपने आसपास हर एक चीज परफेक्ट चाहिए। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ तुम इसमें कमियां निकाल रहे हो। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम इसे कैसे जानते हो। वो ये मेरी, मंथन बोलते हुए रुक गया। वो आरव से अनु के बारे में बात करना नहीं चाहता था तो उसने बात घुमाते हुए कहा, ये मेरी फ्रेंड की बहन है, मैं इससे इन दिनों पहले ही मिला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं जानता इसके बारे में। फ्रेंड की बहन? फिर ठीक है, फ्रेंड की बहन भी बहन ही होती है, आरव से बड़बड़ाकर कहा और फिर टेबल पर जाकर बैठ गया। वो कुछ सोच रहा था तभी उसके मोबाइल पर कबीर का कॉल आया। आरव ने उसका कॉल इग्नोर कर दिया। एक के बाद दो से तीन बार कबीर ने कॉल किया लेकिन आरव ने एक बार भी पिक नहीं किया। आप चाहो तो जा सकते हो, मैं देख लूँगा, मंथन बोला। नहीं, साक्षी को होश आने से पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला, आरव ने जवाब दिया। आपको पहले कभी साक्षी दिया किसी और लड़की की केयर करते नहीं देखा? दी यही बताती थी कि आप इमोशन शो नहीं करते, जबकि यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है, मंथन ने हैरानी जताते हुए कहा। मैं चेंज नहीं हुआ हूँ और ना ही होने वाला, साक्षी मेरी अकलौती फ्रेंड है तो उसके लिए इतना करना बनता है। रही बात इस डॉक्टर की, तो मैं इतना भी इनसेंसिटिव नहीं हूँ कि किसी सोते हुए इंसान को जगाऊं, आरव ने जवाब दिया। मंथन ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। दोनों के बीच चुप्पी छाई हुई थी और दोनों वापस अपने फ़ोन में लग गए। कबीर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आरव को कॉल कर रहा था। जब आरव ने उसका कॉल पिक नहीं किया तो वो खुद ही हॉस्पिटल चला आया। उसे पता था आरव इस वक्त कहाँ हो सकता था, इसलिए वो सीधा साक्षी के रूम तक पहुँच गया था। मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हैं? कबीर ने दरवाजे से ही कहा। ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं, कहकर आरव खड़ा हुआ और फिर कबीर के साथ बाहर चला गया। वो दोनों हॉस्पिटल की कैंटीन एरिया में थे और कॉफ़ी पी रहे थे। इतनी भी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि तुम यहाँ तक आ गए? आरव ने कॉफ़ी का सिप लेकर पूछा। आप अपने मोबाइल में लगे थे तो मुझे लगा आपको पता चल गया होगा, कबीर ने हैरानी दिखाते हुए कहा और फिर उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन आरव की तरफ कर दी। उसकी स्क्रीन पर उसी रिपोर्टर के मरने की न्यूज़ आ रही थी जिसे कबीर ने अनु की मौत के बाद किडनैप किया था। इसे मरे दो दिन होने वाले हैं और मुझे इस बारे में पता तक नहीं। हाँ, जानता हूँ मैं इसे मारने के ऑर्डर्स दिए थे, पर तुमने तो सच में इसे मार दिया, आरव ने उसकी तरफ घूर कर देखा। मुझे पता था आपने गुस्से में ऑर्डर दिया है, तभी मैंने उसे सिर्फ किडनैप करके रखा था और इतने टाइम तक उसे डराया धमकाया ताकि वो बाहर आकर कुछ ना कहे, पर मुझे नहीं पता अचानक वो बेसमेंट से कैसे गायब हो गया। मैं माहिरा मैम के साथ होने की वजह से बिजी था और अब अचानक थोड़ी देर पहले मुझे इसकी मौत की खबर पता चली। कबीर ने उसे सारी स्टोरी सुना दी। वो भी नहीं जानता था कि रिपोर्टर को बेसमेंट से निकालकर किसने मारा होगा। अजीब बात है ना, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच थी। मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर देते हुए कहा था कि इसे भी उसी होटल की छत से फेंक देना और इसकी मौत भी उसी तरह से हुई। क्या सच में तुमने ये नहीं किया? आरव ने एक बार फिर पूछा। कबीर ने नामे सिर हिला दिया। उसने आगे कहा, समझ नहीं आ रहा इसे किसने मारा होगा, बस इसी बारे में आपसे बात करनी थी। आपने कॉल पिक नहीं किया तो यहाँ तक आ गया, मुझे लगा ये आपने करवाया होगा। मैं कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करता, जो भी काम होता है वो तुम्हारे जरिए होता है। तुम अच्छे से जानते हो मुझे बाकी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ छवि सिंघानिया को बर्बाद करना है। पहले भी मेरे बारे में ऐसी फेक न्यूज केसेस वगैरह हुए हैं, पर उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया क्योंकि उस लड़की ने मेरी हेल्प की थी, और जो मेरी हेल्प करता है मैं उसे कभी नहीं भूलता। आरव ने काफी लापरवाही से कहा, उसे सच में रिपोर्टर की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही इस बात से कि उसे किसने मारा होगा। फिर उसने बात बदलते हुए आगे कहा, खैर इसे छोड़ो, इसे मारना था तो मर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें उस एक्ट्रेस की मौत के पीछे का कारण पता लगाने का बोला था, कुछ पता चला उस बारे में? जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको मेल कर दिया था। बी टाउन में होने की वजह से उसके काफी सारे दुश्मन थे, पर कोई उसे मारने के बारे में नहीं सोच सकता था। मुझे लगता है उसकी मौत एक्सीडेंटल थी, कबीर ने बताया। आरव ने कुछ देर तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, फिर भी कोई भी क्लू मिले तो बताना, छानबीन जारी रखो। पुलिस ने केस बंद कर दिया है पर हम पीछे नहीं हटेंगे, मुझे नहीं लगता उसकी मौत एक्सीडेंटल थी। कबीर ने उसकी बात पर हामी भरी, उसे जो भी बात करनी थी वो कह चुका था। उसके बाद कबीर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद भी आरव वहीं पर बैठा था। रिपोर्टर को किसने मारा होगा? क्या सब कुछ होटल सात से जुड़ा हुआ है या किसी एक इंसान से? आरव थोड़ी देर तक वहां बैठकर सोचता रहा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो उठकर वापस साक्षी के रूम में आ गया। वो अंदर आया तो मंथन भी वहां लगे काउच पर सो चुका था। उसे देखकर आरव ने सिर हिलाकर कहा, इसे केयरलेस कहता है और खुद भी यहां आराम से सो रहा है। आरव के फेस पर हल्की सार्केस्टिक स्माइल थी। उसने आयो की तरफ देखा तो वो भी आराम से सो रही थी। साक्षी को होश नहीं आया था और वहां कोई नर्स भी नहीं थी, इस वजह से आरव वहीं उसके पास टेबल पर बैठकर गेम खेलते हुए साक्षी की देखभाल कर रहा था।